नमस्कार भारत, आज है 6 अगस्त दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। रियो के मराकाना स्टेडियम में ओलंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन, देश की सांस्कृतिक विविधता और विरासत का रंगारंग प्रदर्शन। रियो खेलों की तैयारी पर हुए भारी खर्च के विरोध में कुछ लोग स्टेडियम के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन।
I'm feeling angry and I'm feeling a lot of solidarity from the people that were.
एक खास मुलाकात ब्रसल्स हवाई अड्डे पर हुए हमले में जख्मी हुई भारतीय एयर होस्टेस निधि छापेकर से, जिनकी तस्वीर चर्चा में रही थी।
उस पल को मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो लोग थे वो मुझसे भी बेबस थे।
होगी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बुधिया की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरो में हो रहे 31वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह मराकाना स्टेडियम में हो रहा है। रोशनी, संगीत, नृत्यों के प्रदर्शन के जरिए ब्राजील की समृद्ध संस्कृति और जातीय विविधता का जश्न मनाया गया। 200 से ज्यादा देशों के एथलीट अब दर्शकों के सामने परेड कर रहे हैं। खेल आयोजकों को उम्मीद है कि रियो ओलंपिक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट में घिरे ब्राजील में नई उम्मीद का संचार करेंगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने रियो ओलंपिक पर हो रहे बेतहाशा खर्च के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है, हालांकि उनकी संख्या ओलंपिक समर्थकों के मुकाबले बहुत कम है। अमेरिका के शिकागो शहर की पुलिस ने बीते सप्ताह पुलिस की गोली से मारे गए एक निहत्थे काले युवक की मौत से चंद मिनट पहले का वीडियो जारी किया है। पुलिस इस युवक की कार का पीछा कर रही थी। शहर की पारदर्शिता बढ़ाने की नीति के तहत पुलिस कैमरा से रिकॉर्ड किया गया कोई वीडियो पहली बार इतनी जल्दी जारी किया गया है। अमेरिका में हाल के दिनों में पुलिस के हाथों काले युवकों की मौत की घटनाओं से पुलिस और काले युवकों के बीच तनाव का माहौल है। पॉल ओ'नील के परिवार के वकील और कार्यकर्ता जमाल ग्रीन का कहना है कि पुलिस को अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए अभी और कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा,
We want a relationship with the police department, but things have to change. The training has to
change. हम पुलिस विभाग के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें बदलनी होंगी। पुलिस के प्रशिक्षण, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने में बदलाव लाना होगा। जब अधिकारी कुछ गलत करें तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए। अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिलित्ज ने पनामा की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जाँच करने के लिए गठित एक जाँच आयोग से इस्तीफा दे दिया है। स्टिलित्ज का कहना है कि ये जांच भी अपने आप में पारदर्शी नहीं है। स्विट्जरलैंड के भ्रष्टाचार निरोधक विशेषज्ञ मार्क पीथ ने भी इस आयोग से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पनामा सरकार ने उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट को प्रकाशित करने की गारंटी नहीं दी है। ये जांच आयोग अप्रैल में पनामा की एक कानूनी फर्म के दस्तावेज लीक होने के बाद गठित किया गया था। लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि पनामा में दुनिया भर के नेताओं, अमीर लोगों और मशहूर हस्तियों को टैक्स चोरी में मदद करने के लिए एक व्यवस्था काम कर रही है। सीरिया में इस्लामी विद्रोही समूहों के गठबंधन का कहना है कि उसके लड़ाकों ने अलेप्पो शहर के उत्तर में एक बड़े तोपखाने अड्डे को निशाना बनाया है। ये सीरिया के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक है। इस हमले का उद्देश्य अलेप्पो शहर पर सीरियाई सेना की घेराबंदी को तोड़ना है। समय विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रह रहे करीब 2.5 लाख लोग सेना की घेराबंदी में फंसे हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। ब्राजील के रियो शहर में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह चल रहा है। ये पहला मौका है जब किसी दक्षिण अमरीकी देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में कलाकारों ने रियो के मराकाना स्टेडियम में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को रोशनी, संगीत और नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की। खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में हाथ में पौधा लिए बच्चे प्रकृति के संरक्षण के महत्व को दर्शाते नजर आए। इस बार 207 देशों के करीब 10,500 खिलाड़ी 28 तरह के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 112 साल में पहली बार गोल्फ की ओलंपिक खेलों में वापसी हो रही है। हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश, आप बहुत गौर से उद्घाटन समारोह देख रहे थे, क्या क्या देखा आपने और क्या कुछ खास था, हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
जी अमरीश, अगर इस उद्घाटन समारोह की बात की जाए तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में आखिरकार भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे वो घड़ी आ ही पहुँची जब 31वें ओलंपिक खेलों का विधिगत उद्घाटन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष टॉमस बाख ने मुख्य स्टेडियम में ब्राज़ील का झंडा लहराया और उसके बाद ब्राज़ील का राष्ट्रगान स्टेडियम में गूंज उठा। उद्घाटन समारोह की शुरुआत में ही ब्राज़ील की महान संस्कृति का प्रदर्शन लेजर किरणों द्वारा किया गया, जैसा कि आपने जिक्र किया। जंगलों में चहकती पक्षियों की आवाज़ के बीच आदि मानवों को दर्शाया गया। इसके बाद समुद्री मार्ग से यूरोपियन और पुर्तगाल के व्यापारियों का आगमन जहाज़ों के जरिए दिखाया गया कि कैसे जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अति विविध प्रजातियों वाला ब्राज़ील उपनिवेश में कैसे बदलना शुरू हुआ। इसके बाद 20वीं शताब्दी में जापान के प्रवेश को दिखाया गया। जिस अंदाज में ये सब दिखाया गया वो सचमुच आंखें खोल देने वाला था, खासकर भारत के दर्शकों के लिए जिनके लिए आसमान में अभी भोर का तारा डूबा भी नहीं था। फिर बड़े बड़े भवन निर्माण ने ब्राज़ील को कैसे बदला ये भी दिखाया गया, लेकिन सबसे अधिक कमाल किया राइट बंधुओं की तर्ज पर उड़ाए गए हवाई जहाज ने। और जब बात ब्राज़ील की हो तो भला नृत्य से समारोह कैसे दूर रह सकता था। 1953 से लेकर आज के दौर तक डांस ने किस तरह का रूप बदला, नृत्य ने किस तरह के परिवर्तन आए, ये सब समन्वय में दिखाया गया। लगभग 4 फ्लोर पर आमने सामने नाचते जोड़ों ने समा बांध दिया। उसके बाद लेजर से ही लाल प्रकाश का पुंज जैसे स्टेडियम में छा गया। घूमते टूटते आयताकार स्थान में विभिन्न रंगों की छटाओं से संगीत की लहरियों पर मस्ती की बहार छाती जा रही थी। विविधताओं का जैसे जश्न मन रहा था। आतिशबाजी के लाल रंग में डूबा प्रकाश मानो कह रहा था कि तमाम निराशाओं, शंकाओं और गहरे अंधेरे को छोड़कर बस जोश में डूब जाओ। लाल रंग आखिरकार जोश का ही प्रतीक है। और उसके बाद अम्बरीश, सबको इंतजार था कि किस तरह से वहाँ पर खिलाड़ियों का आना शुरू होता है। सबसे पहले ग्रीस के एथलीट आए क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन वहीं होता, और थोड़ी देर पहले भारतीय समय अनुसार भारतीय खिलाड़ी भी वहां पर
अभिनव बिंद्रा नेतृत्व कर रहे थे दल का। बहुत अच्छे शब्दों में आपने पूरी समा बांधी, वहां का दृश्य उपस्थित कर दिया। आपसे फिर बात करेंगे। रियो में हो रहे खेलों को ब्राज़ील में देश के लिए गौरव के पल की तरह देखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खेल आयोजन में हुए खर्च का विरोध कर रहे हैं। सीधे चलते हैं रियो, जहाँ स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी शोभन सक्सेना। शोभन, पहले बताइए कि मराकाना स्टेडियम के बाहर क्या नज़ारा है?
मैं यहाँ मराकाना के बाहर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। यहाँ पे की यहाँ पे स्थिति जो है बहुत ही टेंस है, यहाँ पे काफी टेंशन है यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोगों ने कोशिश की कि वो स्टेडियम के अंदर जाएं। और जो यहाँ की अभी सरकार है ब्राज़ील की, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट है यहाँ के मिशेल देवर, उनके खिलाफ में प्रदर्शन करे। और वहाँ पे आंसू गैस का प्रयोग किया गया है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है, तो बहुत टेंशन है। और काफी लोगों को यहाँ पे हिरासत में भी लिया गया है, ऐसा भी लग रहा है। और ये शायद पहला ऐसा ओलंपिक है कि जहाँ पे कि उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने उस देश तो उसको ओलंपिक की जो घोषणा की जाती है कि आज डिक्लेयर द ओलंपिक्स ओपन, वो नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं, अंतरिम राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के, उनको इस बात की आशंका थी कि वो अगर वो ऐसी घोषणा करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे और उनकी बुइंग करेंगे। तो बहुत सारे डेलीगेशन आके जा चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत टेंस है। आज मैं पूरे दिन रियो में बाहर था, सड़कों में था, लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, और इस तरह का माहौल लग रहा है कि ब्राज़ील के लोग इस ओलंपिक से काफी नाखुश हैं।
तो सिर्फ विरोध करने वाले लोग ही स्टेडियम के बाहर हैं या फिर इस आयोजन का जश्न मनाते लोग भी नजर आ रहे हैं?
ये कुछ लोग हैं कि जो कि जश्न मना रहे हैं स्टेडियम के अंदर, जो लोगों ने टिकट लिया है, जो मौजूद है वहां पे, वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन स्टेडियम के बाहर एक बहुत ही अजीब स्थिति है। पूरी सड़कों पर जब जाएं तो रियो की सड़कों पे, रियो की जो कम्युनिटीज है वहाँ पे लोगों में विरोध है। आज बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं और लोग इससे ज्यादातर में लग रहा है यहाँ पे कि काफी नाखुश है। मैं कुछ यहाँ की जो स्लम है जिनको फवेला बोला जाता है, वहाँ पे गया था, लोगों से मिला था, और वो इस बात से बहुत नाराज है कि सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है इस ओलंपिक के ऊपर, लेकिन उनकी एजुकेशन के बारे में, उनकी सेहत के बारे में कुछ पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है और पुलिस ने बहुत अत्याचार किए हैं। तो एक अजीब तरह का माहौल बन गया है ब्राज़ील में इस वक्त कि लोग, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा नाखुश है ओलंपिक से, और बहुत सारे विरोध हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अभी बाहर खड़ा हूँ मराकन स्टेडियम के बाहर, मुझे बहुत पुलिस दिख रही है, यहाँ पे आंसू गैस भी थोड़ी सी महसूस हो रही है
जी।
लेकिन क्या हुआ है एक्चुअली मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग इस तरह की बातें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डाल रहे हैं कि बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया शोभन इस पूरी जानकारी के लिए। रियो ओलंपिक में भारत के 118 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो 15 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। आदेश में आपसे बात कर रहा था, आपने एक रिपोर्ट तैयार की है भारतीय खिलाड़ियों की मेडल जीतने की संभावनाओं पर, पहले उस रिपोर्ट को सुनते हैं।
आज रियो में तीरंदाजी, बास्केटबॉल, बुक्केबाजी, रोड साइकिलिंग, साइकिलिंग, इक्वेस्टेरियन, फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, रोइंग, रग्बी सेवन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, बीच वॉलीबॉल, इंडोर वॉलीबॉल, वाटर पोलो और वेटलिफ्टिंग के मुकाबले आयोजित होंगे। आज 12 स्वर्ण पदकों का फैसला भी होगा। भारत के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, उसके खिलाड़ी हॉकी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस और रोइंग में अपना दमखम दिखाएंगे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल क्लासिफिकेशन में भारत की अपूर्वी चंदेला और अयोनिका पॉल अपना निशाना साधेंगी, लेकिन सबकी नजरें रहेंगी 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर पिस्टल में निशाना लगाने वाले जीतू राय पर। उनके अलावा गुरप्रीत सिंह भी 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में शूटिंग रेंज पर उतरेंगे। जीतू राय ने 2014 में ग्रेनाडा में संपन्न हुई ISSF विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, उन्होंने 2014 में ही इंचियोन एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। जीतू राय खुद मानते हैं कि साल 2013 से ही उनकी कामयाबी की राह आसान हुई।
2013 में इतना कोई नहीं जानता था, 2013 में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एक मेडल नहीं जीता, लेकिन उसी वजह से मुझे आज एक्सपीरियंस मिल गया, मतलब जो भी मेडल जीतने का कैसे जीतना है वो मैंने लिया, तो एक्सपीरियंस आज आ गया।
8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम आज रियो में अपने पूल में आयरलैंड का सामना करेगी। पी श्रीजेश की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतकर कुछ भरोसा जरूर पैदा किया है। पी श्रीजेश का पहला लक्ष्य टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाना है।
अभी तो माइंडसेट एक ही है कि अच्छा प्रदर्शन करना और रियो में फर्स्ट क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है।
टेनिस में पुरुष युगल वर्ग में भारत के लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना अपना मुकाबला खेलेंगे। उनका सामना पोलैंड के लुकास कुपोट और मार्सिन मातकोवस्की से होगा। वहीं महिला युगल वर्ग में भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा और प्रार्थना थोम्ब्रे अपना मैच खेलेंगी। उनका सामना चीन की पेंग शुई और झांग शुई से होगा। रियो जाने से पहले सानिया मिर्जा ने दावा किया था कि वो पदक के लिए जी जान लगा देंगी।
हम जब भी टेनिस रैकेट उठाते हैं हम इंडिया के लिए खेलते हैं, चाहे वो विंबलडन में हो या ओलंपिक्स में हो या US ओपन में हो। ये गलतफहमी है कि हम सिर्फ रियो में ही इंडिया के लिए खेलेंगे, लेकिन हम जान लगा देंगे मेडल लाने के लिए, दैट्स आवर गोल।
टेबल टेनिस में पुरुष एकल वर्ग में भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी अचंता शरत कमल और सौम्यजीत घोष भी उतरेंगे। रोइंग में पुरुष एकल स्कल्स में भारत के दत्तू भोकानल अपना दमखम दिखाएंगे। अब देखना है कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ी किस अंदाज में आगाज करते हैं।
आदेश कुमार गुप्त रिपोर्ट सुना रहे थे भारतीय खिलाड़ियों की संभावनाओं पर। अभी चूंकि जो उद्घाटन समारोह है वो चल ही रहा है, इसलिए अखबारों में इसकी वैसी चर्चा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पहले नंबर का ट्रेंड, मतलब टॉप ट्रेंड बनी हुई है रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की खबर। दिलनवाज पाशा उस पर नज़र रख रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। क्या क्या कुछ लिखा है लोगों ने?
जी, सबसे ज़्यादा जो रियो ओलंपिक माराकाना स्टेडियम में उसका उद्घाटन हुआ है उससे जुड़ी तस्वीरें, रंगारंग तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। ये ज़्यादातर एजेंसी की जारी तस्वीरें, लेकिन बहुत सारे लोग ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। भारत के मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो इस समय रियो में हैं, उन्होंने भी तस्वीरें साझा की हैं नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ, और साथ में उन्होंने जो रियो का एक प्रसिद्ध स्मारक है क्रश द रिडीमर उसके साथ एक तस्वीर शेयर की है जिसे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा रियो ओलंपिक में जो पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया है वो बहुत लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और उससे जुड़ी बातें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कई लोगों का कहना है कि इससे एक वाकई में एक संदेश जो ओलंपिक खेल दे रहे हैं वो समाज को बदलने का और जिसकी ज़रूरत है वो संदेश दिया गया है, उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। लेकिन इसके अलावा स्टेडियम के बाहर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ा चिंताजनक हैं। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों को आंसू गैस से जूझते हुए, कुछ को पुलिस से भिड़ते हुए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। और अगर इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो एक, अगर अभी मैं, मेरे हाथ में मोबाइल है और अभी जितनी देर में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, करीब 200 से ज़्यादा ट्वीट इस रियो 2016 हैशटैग के साथ हो चुके हैं। तो जितना जोश दर्शकों के मैदान में, जो 75,000 दर्शक मौजूद हैं उनमें हैं, उनसे कम जो लोग सोशल मीडिया के जरिए इस ओलंपिक से जुड़े हैं उनमें नहीं
है। पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपना जो कुछ भी उनके मन में भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज इस पूरी जानकारी के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या भारत रियो ओलंपिक में इतिहास रच पाएगा? 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते थे। रियो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का दावा है कि वो बेहतरीन प्रदर्शन को तैयार हैं। पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 6 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब रुक करते हैं भारत से जुड़ी कुछ खबरों का। असम के कोकराझार में हुए हमले में एक हमलावर समेत 14 लोग मारे गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक मुकेश सहाय के मुताबिक हमला नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने किया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस बारे में पूर्वोत्तर मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार शुबीर भौमिक से बात की और सबसे पहले इस संगठन के बारे में पूछा।
देखिए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो है वो काफी सालों से एक आजाद बोडो आवाज भूमि के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ और असम के सरकार के खिलाफ इनका जो सशस्त्र आंदोलन है वो जारी रहा है। 3 साल पहले इनका एक बहुत बड़ा गुट जो है इनके भूतपूर्व चेयरमैन रंजन दाइमारी के नेतृत्व में वो लोग अलग हो गए मूल संगठन से और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू किया। पर एक जो इनका छोटा फैक्शन जो है वो रह गया, उसका नेतृत्व दे रहे सोंगजीवित। ये जो हमला है सोंगजीवित का जो फैक्शन है उनके तरफ से किया गया है ये बताया जा रहा है। इसका 2 वजह हम समझते हैं। एक तो ये है कि जो NDFB जो आंदोलन करते रहे हैं उनका मूल गुट भारत सरकार के साथ बातचीत को आगे बढ़ाकर अभी ये सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार के साथ इनका एक समझौता होने वाला है और इससे शायद जो गुट बातचीत में विश्वास नहीं करते हैं इनके तरफ से ये हमला किया गया है ताकि बातचीत का जो प्रक्रिया है और जो राजनीतिक समाधान का प्रक्रिया जो है जिसको लेकर भारत सरकार और NDFB के रंजन दाइमारी गुट आगे बढ़ रहे हैं उसको सैबोटेज करने का ये एक बहुत बड़ा एक कोशिश है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शुबीर भौमिक। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख विजय रूपाणी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो 7 अगस्त को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे नितिन पटेल को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। विजय रूपाणी की शख्सियत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे निकल गए? बता रहे हैं अहमदाबाद से अंकुर जैन।
ये गीत पिछले साल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था और गा रहे कलाकारों में से एक हैं विजय रूपाणी, जिन्हें कल भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का नया मुख्यमंत्री घोषित किया। रूपाणी को गाने का बड़ा शौक है और वे अपनी पार्टी के भीतर थोड़ी फैन फॉलोइंग भी रखते हैं, लेकिन रूपाणी का असली शौक तो राजनीति ही है और शायद इसीलिए शुक्रवार को जहां बीजेपी कार्यकर्ता आनंदीबेन पटेल के बाद नितिन पटेल को अपना नया मुख्यमंत्री मान फटाके फोड़ रहे थे, वहीं आखिरी समय में नितिन भाई को पीछे छोड़ते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीबी रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने में सफल रहे। रविवार को शपथ लेकर वे गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बनेंगे। नितिन पटेल जहां जमीनी नेता माने जाते हैं वहीं रूपाणी ने बरसों तक पर्दे के पीछे रहकर भाजपा के लिए रणनीति बनाने का काम किया है। पर ऐसा क्या खास है रूपाणी में? रूपाणी का जन्म पड़ोसी देश म्यांमार बर्मा की राजधानी रंगून में एक जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगून में तब एक दुकान चलाते थे। रूपाणी के जन्म के बाद ही उनका परिवार गुजरात के राजकोट में आकर बस गया। राजकोट में वे छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे। बाद में विजय रूपाणी 1971 में जनसंघ में शामिल हुए। इमरजेंसी के दौरान विरोध करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
इमरजेंसी के वक्त 24 साल के रूपानी करीबन एक साल तक जेल में रहे और बाहर निकलकर उन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे गुजरात में कांग्रेस की चिमनभाई पटेल सरकार के सामने हुए नवनिर्माण आंदोलन का भी हिस्सा बने, जिसके बाद वे लंबे समय तक राजकोट सीट से विधायक रहे। इसके अलावा वे भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। पार्टी में वीरू के नाम से प्रसिद्ध रूपानी PM मोदी और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। बतौर BJP प्रवक्ता उन्होंने कई वर्षों तक मोदी और शाह के साथ काम किया है। 2014 में राजकोट सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीतने के बाद उन्हें आनंदीबेन पटेल की सरकार में बतौर मंत्री चुना गया, लेकिन रूपानी वहां थमने वाले नहीं थे। इस साल की शुरुआत में उन्हें गुजरात BJP का अध्यक्ष बना दिया गया और अब वे गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनते ही रूपानी ने कहा,
नरेंद्र भाई मोदी जी और श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जो विकास की डेवलपमेंट की राजनीति आगे बढ़ाई है और नरेंद्र भाई ने जो सूत्र दिया था कि सबका साथ सबका विकास, ये विरासत को आगे बढ़ाकर आने वाले 17 के चुनाव हम सब साथ मिलकर और गुजरात को पूरा देश का रोल मॉडल बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे।
रूपानी के बयान से ये साफ हुआ कि उनकी अब नजर 2017 में होने वाले गुजरात चुनावों पर है। पटेल और दलित आंदोलन के बाद कमजोर हुई BJP ने शायद इसीलिए रूपानी को चुना है। अंकुर जैन, BBC अहमदाबाद।
जेट एयरवेज की एयर होस्टेस निधि छापेकर तब चर्चा में आई जब ब्रसल्स के हवाई अड्डे पर धमाके में घायल होने के बाद उनकी तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छपी। तस्वीर में निधि बदहवासी की अवस्था में बैठी हुई नजर आती हैं। उनकी एक टांग ऊपर उठी है और उनके कपड़े धमाके में जल गए हैं। इसी साल मार्च में हुए इस हमले में 35 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने निधि से खास मुलाकात की और सबसे पहले उसी तस्वीर का जिक्र किया।
आपको हम उसे एक तस्वीर के जरिए जानते हैं जो ब्रसल्स पर हमले के तुरंत बाद पूरी दुनिया में और कई अखबारों में भी छपी। आपने वो तस्वीर कब देखी?
मैंने वो तस्वीर 16 अप्रैल को देखी। 17 को मेरे हस्बैंड वापस इंडिया आ रहे थे बच्चों के लिए 5-6 दिन के लिए। इन्होंने गूगल पे मेरा नाम डाला और वो तस्वीर आ गई और मैं उसे देख के इतनी दंग रह गई। मुझे लगा ये कब हुआ और किसने खींचा। लेकिन जब मैं उस तस्वीर को देख रही थी, उस तस्वीर में मुझे बेबसी, दर्द, मदद, लाचारी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
क्या आपको लगा कि वो तस्वीर ऐसे वक्त में ली गई जब आप ये तय करने की स्थिति में नहीं थी कि आप अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहेंगी या नहीं? क्या आपको एक्सपोज्ड लगा?
एक तरह से मुझे लगता है कि हाँ भी, और एक तरह से मुझे लगता है ना भी, क्योंकि जिसने भी ये तस्वीर खींची उसने ये दिखाया कि ऐसे वक्त पे किस तरह से लोग हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। और मेरी नहीं, बहुत लोगों की तस्वीर खींची गई। जब मैं यहाँ आई तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, क्योंकि मेरा बेटा 14 साल का है और मेरी बेटी 10 साल की है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें शर्म आई अपनी माँ की तस्वीर देख के? तुम्हें कहीं ऐसा लगा कि उसके बदन पे कम कपड़े हैं? मेरी बेटी बोली कि आपसे, आपको इस हालत में देख के हमें और साहस आया कि हमारी माँ इस हालत में है लेकिन फिर भी लड़ रही है, वो शेर है। लेकिन एक्चुअली मुझे मेरी बेटी टाइग्रेस बोलती है।
जब आपकी तस्वीर ली गई तो ऐसे लग रहा है जैसे आप एक टक देख रही हैं, बहुत ट्रॉमा में हैं। उस पल को याद करती हैं तो क्या जहन में आता है?
उस पल को मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो लोग थे वो मुझसे भी बेबस थे। वहाँ पर जो मैंने देखा, लोगों की पुकार, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और मुझे हमेशा ये सिखाया गया है मेरी 20 साल की ट्रेनिंग में, हमें फर्स्ट एडर्स बोलते हैं, जो सबसे पहले किसी को देख के किसी को तुम सहायता कर सकते हो कि जाओ उनको बचाओ। जहाज़ में भी जब कुछ होता है तो हम सबसे पहले जाते हैं। लेकिन उस समय मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी में जान नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो मैंने देखा मैं ज़िंदगी में कभी वापस देखना नहीं चाहूँगी। किस तरह से लोग बिखरे पड़े थे, किस तरह से लोग पुकार रहे थे कि मेरा बच्चा, मेरी फैमिली।
क्या अभी भी आप सहम जाती हैं उसको याद करके, या आगे आपको लगता है आप अपना करियर उसी तरीके से रिज्यूम कर पाएंगी?
सहमती हूँ, हाँ सहम लगता है, क्योंकि वो पुकार बार बार जब याद करो तो आ जाती है। कोई सामने से पूछता है, बहुत दिन के बाद आता है, कैसे हुआ, तो फिर से याद आती है वो चीज़। हाँ, मैं अपना करियर वापस ज्वाइन करूँगी। ऐसा नहीं लगता कि डरना चाहिए किसी चीज़ से, ऐसा लगता है कि हिम्मत रखनी चाहिए लड़ने की, हिम्मत रखनी चाहिए आगे बढ़ने की, हिम्मत रखनी चाहिए अगर किसी को कुछ हो तो उसे सहारा देने की।
ब्रसल्स हमले का खौफनाक मंजर याद कर रही थी एयर होस्टेस निधि छापेकर और उनसे बात कर रही थी दिव्या आर्य। ओडिशा के गरीब बच्चे बुधिया सिंह के दौड़ने की प्रतिभा ने कुछ साल पहले सबका ध्यान आकर्षित किया था। इस हफ्ते उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है बुधिया बॉर्न टू रन। इस फिल्म में बुधिया के कोच बिरंची दास की भूमिका निभाई है मनोज बाजपेयी ने और फिल्म का निर्देशन सौमेंद्र पाधी ने किया है। सुनिए इस फिल्म की समीक्षा फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी से।
हमारे देश ने आज तक एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है। इंडिया का यह सपना बुधिया पूरा करेगा।
इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बुधिया बॉर्न टू रन जिसमें नजर आ रहे हैं मनोज बाजपेयी। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से। अर्णब, कैसी लगी आपको ये फिल्म?
सुबिरन, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स फिल्में बनती हैं वो एक तरफा होती हैं, यानी उसमें हीरोइक दिखाया जाता है हर समय किरदार को। जैसे मिल्खा सिंह बनी है या मैरी कॉम, उनके स्ट्रगल को लेके दिखाई जाती है और ये दिखाया जाता है, ये जताया जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ी इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। बुधिया सिंह एक ऐसी बच्चे की कहानी है जो 5 साल का है और उसका एक कोच है, जूडो कोच, जो उसके टैलेंट को स्पॉट करता है और उसको लगता है कि अरे यह तो वर्ल्ड क्लास रनर बन सकता है। ये भुवनेश्वर की कहानी है और सच्ची कहानी है, बायोपिक है। यहाँ पे बुधिया सिंह को एक बिल्कुल आम बच्चे की तरह दिखाया गया है और मनोज बाजपेयी भी एक आम जूडो कोच की तरह हैं, यानी उस एक ऑर्फनेज चलाता है जहाँ 22 बच्चे हैं और 22 बच्चों को वो ट्रेन करता है। बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी नहीं है, जो कि अक्सर ऐसा होता है कई पैशन जिनका होता है कि हम कुछ कर दिखाएंगे या अपने बच्चों के जरिए कुछ कर दिखाएंगे। और बुधिया सिंह उन दोनों की कहानी है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही मनस्पर्शी है और बहुत ही इंस्पायरिंग है।
और इसमें परफॉर्मेंसेस कैसी थी?
देखिए, बुधिया सिंह तो इतना बच्चा है कि आपको लगेगा कि अरे ये शायद यही बुधिया सिंह है। हालांकि इस बात को मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं, तो 5 साल का था वो 16 साल का है। बुधिया सिंह का जो किरदार निभाया है मयूर पटोले ने, इतना खूबसूरती से निभाया कि लगता है कि शायद यही बुधिया होगा।
छोटी हर मुश्किल है, छोटी छोटी हर दूरी, कदमों की थप 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 में धड़के दिल धक धक, तू दौड़ 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 दौड़, तेरे पांव पे चुपकी है सड़क।
और डायरेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है?
डायरेक्शन जो है सौमेंद्र पाठी का है, वो उड़िया डायरेक्टर है, पहली बार उन्होंने फिल्म बनाई है। कुछ डरे हुए हैं, एक सच्ची कहानी पे फिल्म बनाना भी बहुत मुश्किल होता है कि राइट्स लेने पड़ते हैं बहुत सारे। बिरांची दास का जो मर्डर हुआ था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत एक ऑनेस्ट फिल्म बनाने की कोशिश करी है, हालांकि जैसे मैंने कहा थोड़े डरे हुए थे, तो कुछ क्लीशेज यानी कुछ घिसे पीटे चीजें जोड़ी है उन्होंने थोड़ा सा किरदार को या पूरी कथाना को इंटरेस्टिंग बनाने में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और अच्छी फिल्म बन सकती थी। यानी हम लोग वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फिल्म बना सकते थे, वो नहीं बनाई। बहरहाल उसके बावजूद मैं कहूंगा कि बुधिया सिंह बॉर्न टू रन एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जो मुझे लगता है हर बच्चे को ही नहीं बड़ों को भी देखनी चाहिए।
तो कुल मिला के आप इसे कितने स्टार्स देते हैं?
मैं बुधिया सिंह को 5 में से 3.5 दूंगा।
3.5 स्टार दिए फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी ने फिल्म बुधिया को। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
ब्राजील में हो रहे 31वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह राजधानी रियो डे जेनेरो के मराकाना स्टेडियम में हो रहा है। अमेरिका के शिकागो शहर की पुलिस ने बीते सप्ताह पुलिस की गोली से मारे गए एक निहत्थे काले युवक की मौत से चंद मिनट पहले का वीडियो जारी किया है। सीरिया में इस्लामी विद्रोही समूहों के एक गठबंधन का कहना है कि उसके लड़ाकों ने एलेप्पो शहर के उत्तर में एक बड़े तोपखाने पर हमला किया है। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नजर रखने वाले संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि अड्डे के एक हिस्से पर कब्जा हो गया है और दक्षिण सूडान की सरकार ने देश में शांति स्थापित करने के लिए इलाकाई सेना लगाए जाने को अनुमति दे दी है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।